ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथरा श्रीमद्भागवतम् चौथा स्कंद नौवा अध्याय ध्रुव महाराज का घर। उत्तान पादो राजर्षि प्रभावं तनयस्यतम् श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमम् प्रपेदे विस्मयं परम्। और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा राजर्षि उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज के यशस्वी कार्यों के विषय में जो कुछ सुन रखा था और स्वयं भी देखकर कि वे कितने प्रभावशाली और महान थे, अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि ध्रुव महाराज के कार्य अत्यंत विस्मयजनक थे। तात्पर्य, जब ध्रुव महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता उत्तानपाद ने उसके आश्चर्यजनक कार्यकलापों के संबंध में सब कुछ सुन रखा था। यद्यपि ध्रुव महाराज राजपुत्र थे और केवल 5 वर्ष के थे, किंतु वे जंगल जाकर कठिन तपस्या के द्वारा भक्ति योग में लगे रहे, अतः उनके सारे कार्य आश्चर्यजनक थे। और जब वे घर वापस आ गए तो स्वाभाविक था कि अपने गुणों के कारण वे नागरिकों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने भगवत कार्य करे, उसका पिता भला क्यों ना इतना प्रसन्न हो। महाराज उत्तानपाद सामान्य राजा न थे, वे राज ऋषि थे। प्रारंभ में इस पृथ्वी पर एक ही राजर्षि राज करता था। राजाओं को साधु बनने की शिक्षा दी जाती थी, अतः उनके पास प्रजा के कल्याण के अतिरिक्त कोई काम नहीं रहता था। इन राजर्षियों को समुचित शिक्षा दी जाती थी और जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है, ईश्वरीय ज्ञान अथवा भक्ति योग, जिसे भगवद गीता कहते हैं, राजर्षि सूर्य को प्रदान किया गया और क्रमशः वह सूर्य तथा चंद्रमा से उत्पन्न क्षत्रियों को प्राप्त हुआ। यदि राज्य का प्रधान साधु प्रकृति का होता है तो प्रजा भी वैसे ही होती है और प्रजा परम प्रसन्न रहती है, क्योंकि उसकी भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। अनुवाद और तात्पर्य, अनुवाद दोहराइएगा। राजर्षि उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज के यशस्वी कार्यों के विषय में जो कुछ सुन रखा था और स्वयं भी देखकर कि वे कितने प्रभावशाली और महान थे, अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि ध्रुव महाराज के कार्य अत्यंत विस्मयजनक थे। ओम अज्ञानति कृष्ण। ध्रुव महाराज जब वन में गए, दृढ़ निश्चय लेकर गए थे कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। भक्ति मार्ग में ऐसे दृढ़ता की आवश्यकता होती है। ऐसे दृढ़ता को व्यवसायात्मका बुद्धि ही कहते हैं। व्यवसायात्मका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखाहीनंतास्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि जब कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण की सेवा करता है और उसका मन चित्त कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करता है तो वो अन्य किसी भी वस्तु के बारे में चिंता नहीं करता, सोचता नहीं है। उसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका हो जाती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक मतलब एक ही उद्देश्य हो जाता है, एक ही वस्तु के ऊपर, एक ही कार्य के ऊपर उसका सारा जोर चला जाता है। लेकिन जो इस प्रकार से भगवान की सेवा में नहीं लगे रहते हैं तो उनका क्या होता है, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, बहुशाखा ही अनंताश्च। तो उनकी जो बुद्धि है, उनका मन है, बहुशाखा अनेक दिशाओं में फैल जाता है। कभी इस विषय के बारे में सोच रहे हैं तो कभी उस विषय के बारे में, कभी इस व्यक्ति के बारे में चिंता कर रहे हैं तभी उस व्यक्ति के बारे में। तो इस प्रकार से उनका ध्यान संसार में इधर उधर भटकता रहता है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं हो पाता। बुद्धयो अव्यवसायिनाम, इसलिए हमेशा हमेशा ऐसा व्यक्ति विचलित रहता है, कभी भी शांत नहीं रहता। तो जब कोई व्यक्ति अपने मन को स्थिर करके, मन को और बुद्धि और इंद्रियों को कृष्ण भगवान के चरण कमलों में, कृष्ण की सेवा में केंद्रित कर देता है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्त को शक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद के जीवनी से हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रभुपाद ने सारे जीवन, सारे संसार में परिवर्तन किया, ये परिवर्तन कृष्ण के शक्ति के बिना नहीं संभव था। कृष्ण शक्ति बिना नहीं परिवर्तन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जब तक कृष्ण भगवान हमें शक्ति नहीं देते हैं, भक्ति की शक्ति, तब तक हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और जब ये शक्ति आ जाती है तो भक्त अद्भुत से अद्भुत कार्य करके दिखाता है, जैसे प्रभुपाद जी ने किया। इतिहास में देखते हैं जितने ही बड़े बड़े भक्त हुए कैसे अद्भुत कार्य करके दिखाए। हनुमान ने कैसे अद्भुत कार्य किया, यहां से लंका कूद गए, जो कि एक साधारण किसी के लिए संभव नहीं था। बताया जाता है कि केवल जो वरुण देव हैं और गरुड़, यही दो केवल व्यक्ति हैं जो ऐसे उड़कर जा सकते थे, लेकिन हनुमान उसको कर पाए क्योंकि भगवान श्री राम के भक्त हैं। उसी प्रकार से सारी वानर सेना जो है वो प्रभु रामचंद्र के भक्त थे, इसलिए उनको ऐसे अद्भुत शक्ति मिली जिससे कि वो ऐसे विस्मयजनक कार्य कर पाए। तो उसी प्रकार से अर्जुन की बात भी हम देखते हैं। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और जब सारे पांडवों को और विशेषतः युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का राज्यपद प्राप्त हुआ, तो कई साल उन्होंने राज्य किया। उसके बाद समय आया कि कलयुग का अंत, द्वापर युग का अंत नजदीक आने लगा। और एक समय अर्जुन वो कृष्ण के पास गए द्वारका में। बहुत दिनों से कृष्ण से मिले नहीं थे, और आप जानते हैं कि अर्जुन परम भक्त हैं कृष्ण के, कृष्ण के बिना तो रह ही नहीं सकते। तो सोचा कि बहुत दिनों से कृष्ण से मिले नहीं हैं, तो जाकर क्यों ना कृष्ण से मिल लिया जाए। कृष्ण के साथ में थोड़े दो चार महीने ठहरेंगे, प्रेम का आदान प्रदान होगा। तो अर्जुन वहां गए और कई महीनों से जब लौट कर नहीं आए तो युधिष्ठिर महाराज को थोड़ी चिंता होने लगी कि क्या बात है, वैसे तो दो महीने तीन महीने में आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तो कई महीने बीत गए और अर्जुन की कोई खबर नहीं है, कोई संदेश भी नहीं कि क्यों इतनी देर हो गई। ऐसे चिंता करते करते वो सोच रहे थे कि ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना हुई होगी। तो सोचने के नहीं नहीं भला अर्जुन के साथ में कैसे तो कोई दुर्घटना हो सकता है, और जब तक उसका गांडीव उसके साथ में है, बाण धनुष उसके साथ में है, तो भला उसका क्या खराब हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। और उसके अतिरिक्त
कृष्ण के साथ में है वो, जब कृष्ण के साथ में है तो कौन उसका कुछ बुरा कर सकता है। लेकिन फिर भी मन ही मन में थोड़ी बहुत चिंता तो रहती ही है। फिर अचानक एक दिन अर्जुन लौट कर आए, और जब लौट कर आए तो अर्जुन के मुख को देखकर ही युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कई सवाल किए अर्जुन से। अर्जुन का चेहरा बड़ा गिरा हुआ लग रहा था, बड़े उदास लग रहे थे। ऐसे उनके चेहरे से जो तेज है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, और अर्जुन की जो पीठ है वो भी झुका हुआ था। गांडीव बाण तो हाथ में था, सब कुछ था, लेकिन अर्जुन एक अलग व्यक्ति लग रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि क्या बात है, क्या हो रहा है। इसके पहले युधिष्ठिर महाराज ने कई अशुभ लक्षण देखे थे। ये लक्षण जो है, अलग अलग प्रकार के शुभ और अशुभ लक्षणों की जो ज्ञान है, ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। आजकल लोग इसको नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हमारे बाएं पैर जो है, पैर में कोई खटखट हो या कोई खुजली हो तो उसका एक मतलब होता है। हमारे बाएं तरफ से कोई पशु जाए तो उसका एक मतलब होता है, दाएं तरफ से जाए तो एक मतलब होता है। अगर आकाश में अमुक प्रकार का बादल हो, और अगर कुत्ते एक तरह से भौंक रहे हो, तो इस प्रकार से अलग अलग हम जब दृश्य देखते हैं बाहर संसार में, उससे अलग अलग हम चीजों को जान सकते हैं। ये लक्षणों को जानना ये बहुत ही एक सूक्ष्म विज्ञान है, जो वैदिक सभ्यता में सभी लोग जानते थे। युधिष्ठिर महाराज जानते थे, बड़े बड़े राज ऋषि हुआ करते थे, सब जानते थे। रामायण में भी हम पढ़ते हैं कि राम, प्रभु रामचंद्र भी कहने लगे, जब आक्रमण करने जा रहे थे लंका में, लंका पहुंच गए, समुद्र के उस पार पहुंच गए, लक्ष्मण से कहने लगे कि मुझे अशुभ लक्षण सब जगह दिखाई पड़ रहे हैं, कि देखो ये जो वल्चर्स को क्या कहते हैं, वल्चर जो शव को खाते हैं पक्षी, चीर, देखो चीर चीख रहे हैं सब जगह आकाश में, और देखो हवा की आवाज कैसे आ रही है, और ये देखो कि ये लहरें जो हैं इनकी गति कैसी है देखो। और इस प्रकार से वातावरण में जो उन्होंने देखा, जो लक्षण देखे, उससे उनको पता चला। और कई बार शास्त्र में, रामायण महाभारत भागवत में इन चिन्हों का, इन लक्षणों का वर्णन आता है। जब स्त्री की एक बाएं पलक फटफटाती है तो उसका एक लक्षण होता है, लेकिन जब पुरुष का दाहिना जो पलक है वो फटफटाता है तो उसका अलग होता है। जो स्त्री के लिए बाएं तरफ से अच्छा है वो पुरुष के लिए दाहिने तरफ से बुरा है, और उल्टा। इस प्रकार से लक्षण सीता देवी भी जानती थी। सीता देवी ने भी देखा कि मेरा आंख अभी बाया आंख फटफटा रहा है, इसका मतलब एक प्रकार का भी कुछ होने वाला है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने भी देखा था। तो अर्जुन को कहने लगे कि क्या बात है, मैंने सारे अशुभ लक्षण देखे हैं, मैंने देखा कि गधे घोड़े मेरे बाएं ओर से गुजर रहे हैं, और कुत्ते जो है मेरे सामने से आके मेरे ओर भौंक रहे हैं, जो कि आज तक नहीं होता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सामने से आके कुत्ते भौंक रहे हैं मेरे, पहले साइड से कभी भौंक, कुत्ते भौंकते भी हैं तो कभी इधर उधर से भौंकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि सामने से आकर, जो ऐसे मजाल कि राज ऋषि सारे पृथ्वी के राजा के सामने से आकर कुत्ता भौंक रहा है। और इस प्रकार से कई अशुभ लक्षण युधिष्ठिर महाराज को दिखाई पड़े। तो अर्जुन को उन्होंने कहा कि देखो मैंने फलाना फलाना अमुक अमुक मैंने अशुभ लक्षण देखे हैं, और मैं तुम्हारे चेहरे को भी देख रहा हूं, तुम्हारे शरीर को देख रहा हूं, कि क्या बात है, क्या कोई दुर्घटना हुई है, क्या कृष्ण तो ठीक है ना, क्या फिर वहां कृष्ण की सारी पठरानियां सब ठीक है ना, द्वारका ने हमारे प्रद्युम्न सांबा अनिरुद्ध वो सब कैसे हैं। और इस प्रकार से अलग अलग उनके जो रिश्तेदार थे, यदुकुल के जो अलग अलग महान योद्धा और महान भक्त थे, उनके बारे में एक एक करके युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे, ये कैसे हैं, उद्धव कैसे हैं, अलग अलग नाम लेकर पूछने लगे। और ये सब पूछताछ हुई तो अर्जुन फिर बोलने लगे, कहने लगे कि मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं, क्योंकि अभी कृष्ण हमारे बीच में नहीं रहे, कृष्ण अपने धाम में चले गए, और जैसे ही वो अपने धाम में चले गए या जाने की तैयारी कर रहे थे तो सारा यदुकुल भी नष्ट हो गया। यादवों ने आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को खत्म कर दिया, और कृष्ण के रानियों को लेकर मैं सुरक्षित एक जगह में जा रहा था कि थोड़े डाकू ने मेरे ऊपर आक्रमण किया। और देखिए ऐसी अजीब परिस्थिति हुई कि मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया डाकुओं से, और चोरी कर ली उन्होंने डाकुओं ने। अर्जुन कह रहे लगे यही मेरी बाहें हैं, वही मेरी शक्ति है, शक्ति तो वही है, यही मेरे हाथ, वही मेरे बाहें हैं, यही मेरा गांडीव बाण तीर धनुष यही है, और मैं वही अर्जुन हूं जिसने कि कुरुक्षेत्र के रणभूमि में इतने सारे हजारों लाखों महारथियों की को खत्म कर दिया था मैंने, वही अर्जुन जिसने द्रौपदी को जीत के लाया था, मैं वही अर्जुन हूं, यही मेरा गांडीव बाण है, यही मेरी बाहें हैं, लेकिन साधारण डाकुओं को मैं हरा नहीं पाया। और इस प्रकार से अर्जुन शोक कर रहे थे, और जब अर्जुन इस प्रकार से बोलने लगे तो युधिष्ठिर महाराज को मानो ऐसा लगा कि एक तूफान हो गया उनके हृदय में कि कृष्ण भी नहीं है हमारे बीच। और अर्जुन कहने लगे कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मैं तो एक छोटे से मछली के बराबर था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि एक बड़े विशाल सागर के समान था जिसमें मैं एक छोटा सा मछली के बराबर था, और वहां पर बड़े बड़े तिमिंगल जैसे योद्धा थे। तिमिंगल जानते हैं ना आप क्या है? तिमी नाम का एक पशु होता है जो सागर में रहता है, आजकल तो ऐसे नहीं दिखाई पड़ते, पहले जमाने में खास करके हुआ करते थे, जो एक योजन लंबे हुआ करते थे, एक योजन यानी 8 मील, ऐसे बड़े बड़े जिसको तिमी कहते थे, और तिमी को भी खाने वाले ऐसे पशु होते थे सागर में जिनको तिमिंगल कहते थे। तो अगर तिमी जो एक योजन लंबा है उसको खा जाता है तिमिंगल, तो तिमिंगल कितना बड़ा होगा? तो तिमिंगल के तुलना से एक साधारण छोटी मच्छी जो मछली कितनी, क्या क्या तुलना कर सकते हैं उसकी, कहां छोटी सी मछली और कहां बड़ा तिमिंगल। तो अर्जुन कह रहे थे कि भीष्म द्रोण कर्ण ऐसे बड़े बड़े तिमिंगल थे कुरुक्षेत्र के सागर में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि के सागर में, और कहा मैं एक छोटा सा मछली, लेकिन फिर भी मैं जीत पाया, उन सबको हरा पाया। क्यों? क्योंकि कृष्ण मेरे साथ में थे, कृष्ण ने मुझे शक्ति प्रदान कर दी, इसलिए मैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में विजय प्राप्त कर पाया। और उसी प्रकार से मैंने इतने सारे युद्ध जीते, मैंने खुद शिवजी को पराजित कर दिया, मैंने युधिष्ठिर महाराज के लिए, मैंने आपके लिए ही, जब आप राजस्व यज्ञ करने जा रहे थे तो हर जगह जाके बड़े बड़े राजाओं को हरा कर आपके लिए धन एकत्र करके लाया, और इसलिए मेरा नाम धनंजय बन गया। मैंने इतने शूरवीरता दिखाई, लेकिन इन साधारण मामूली डाकुओं के सामने मैं कुछ भी नहीं रहा। इसका मतलब है कि जो मेरे शक्ति के स्रोत हैं कृष्ण, वो चले गए, इसलिए साथ में मेरी शक्ति भी चली गई। मेरी जो भी योग्यता, मेरा जो भी बल शक्ति, जो भी कुछ थी, वो कृष्ण ने ही दी थी। अब कृष्ण चले गए तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, डाकुओं का सामना भी मैं नहीं कर पाया। इस प्रकार से अर्जुन शोक कर रहे थे। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को उचित शक्ति प्रदान कर देते हैं, जो उनके लीला के लिए, जो उनके कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक है, ऐसे प्रकार की शक्ति और उस मात्रा में शक्ति दे देते हैं जितना आवश्यक है। और जब उनका कार्य संपन्न हो जाता है तो फिर अपने भक्त को वापस बुला लेते हैं। जब कृष्ण ने देखा कि अभी अर्जुन को इस शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा जो यहां पृथ्वी में आने का कारण था वो अभी पूरा हो चुका है, मेरी लीला समाप्त हो चुकी, अब मुझे भी लौट कर जाना है गोलोक वृंदावन जहां से मैं आया था, और अर्जुन और मेरे नित्य पार्षद यदुकुल के जो भी सारे निवासी हैं सदस्य, वो भी मेरे साथ आए हैं, थोड़े गोलोक से आए हैं, थोड़े स्वर्गलोक से आए हैं, तो सबको अपने अपने जगह में जाना है वापस, तो मुझे लीला समाप्त करके जाना है, और अर्जुन भी तो मेरा नित्य पार्षद है, जहां भी मैं अवतार लेता हूं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तो अर्जुन मेरे साथ होता है, और हर जगह मैं ये गीता का उपदेश देते फिरते रहता हूं, हर जगह मैं कोई ना कोई युद्ध करता हूं, और जहां अर्जुन मेरा साथ देता है और मैं अर्जुन का सारथी बनता हूं, और अभी इस ब्रह्मांड में इस समय के लिए, इस युग के लिए ये लीला समाप्त होने जा रही है। जो शक्ति मैंने अर्जुन को प्रदान कर दी थी, जिससे कि वो सबसे बड़ा योद्धा माना गया है सारे पृथ्वी भर में, अभी उस शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अभी सारे युधिष्ठिर, सारे पांडव जो हैं वो हिमालय में जाके वनवास लेने का समय आ गया उनको, और मेरे साथ में लौटने का समय आ गया, तो इसलिए कृष्ण भगवान ने शक्ति वापस ले ली, और अर्जुन ने देखा कि अब कुछ भी नहीं रहा। बलम बलवतम चाहम, भगवान कहते हैं कि जो बलवान लोग हैं उनका बल मैं हूं। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि मैं हूं। तेजस तेजस्वी नाम अहम, जो तेजस्वी लोग हैं उनका तेज का कारण या स्रोत मैं हूं। पौरुषम ऋषु, जो मनुष्य जाति में योग्यता है वो भी मुझी से आता है। इस प्रकार से भगवान अपने विशेष भक्तों को शक्ति प्रदान कर देते हैं, जिससे कि वो विस्मयजनक आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं, और ये केवल भगवान की कृपा से ही होता है। ध्रुव महाराज ने भी ऐसे अद्भुत कार्य संपन्न किए केवल भगवान की कृपा से, क्योंकि वो भगवान के भक्त बने, भगवान को प्राप्त करने के लिए गए थे वो, और इसलिए भगवान ने उनके अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति प्रदान कर दी। और महाराज उत्तानपाद भी आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसे कार्य मेरे 5 साल के बालक ने किए, सारी प्रजा इतने प्रभावित हो गई कि सब लोग ध्रुव महाराज की का गुणगान करने लगे, वाह वाह करने लगे, सभी लोग ध्रुव महाराज से अत्यधिक प्रेम करने लगे। तो ध्रुव महाराज का प्रभाव देखकर महाराज उत्तानपाद बड़े प्रसन्न हुए, जैसे कि एक पुत्र का यश देखकर एक पिता खुश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ध्रुव महाराज का यश और प्रभाव देखकर महाराज उत्तानपाद अति प्रसन्न हुए और सोच लगे कि कैसे हो सकता है कि मेरा छोटा सा बालक ऐसे विस्मयजनक कार्य जो है कर पाए। लेकिन उत्तानपाद महाराज राजर्षि थे, इसे यहां बताया गया है उत्तानपादो राजर्षि ही, तो राजर्षि होने के नाते वो जानते थे, राजा भी थे ऋषि भी थे, तो जानते थे कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक ऐसा पुत्र मिला। देखिए भक्त अगर पुत्र भक्त बन जाता है तो फिर इससे बड़ा सौभाग्य माता पिता को नहीं हो सकता। माता पिता का जीवन सफल जब तब हो जाता है जबकि उनका पुत्र या उनके संतान भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो जाते हैं। इसलिए ऋषभ देव भी बताते हैं, पिता न सस्यान जननी न सस्यान पतिम न सस्यान दैवम न तस्यान न मोचयेत सहोपेत मृत्युम, कि हमें अलग अलग प्रकार के जिम्मेदारियां संसार में नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि पिता, पति, जननी, रिश्तेदार, देवता, गुरु। जब तक कि हम उन लोगों के ऊपर जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, जब तक कि हम उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं दिला सकते। न मोचयेत यह समुपेत मृत्युम, जब तक उनका हम संसार के कष्ट से, जन्म मृत्यु के चक्कर से मोचन नहीं कर सकते, तब तक हम पिता कहलाने के लायक नहीं, माता कहलाने के लायक नहीं, गुरु कहलाने के लायक नहीं, देवता रिश्तेदार तक कहलाने के लिए लायक नहीं है। तो वो माता पिता धन्य है जिनका पुत्र भक्त बन जाता है, वो पत्नी धन्य है जिसके पति भक्त हो जाते हैं, वो पति धन्य है जिसकी पत्नी भक्त हो जाती है, वो समाज धन्य है जहां लोग भक्त हो जाते हैं, वो मंदिर धन्य है जहां सभी लोग भक्त बन जाते हैं और जहां भागवत क्लास में सोते नहीं हैं, और जिनको हरि नाम में रुचि है ना। तो ऐसा समाज धन्य है, और ऐसे भगवान धन्य है जिनके चरण कमलों को भक्त छोड़ता नहीं है, और ऐसा भक्त धन्य है जिसको भगवान छोड़ते नहीं है, और भक्त भटक भी जाए तो उसे बालों से पकड़ कर खींच के ले आए। और ये भक्ति मार्ग धनी है जिससे सारे समाज का, सारे प्रजा का कल्याण हो, जिसमें जीव का वास्तव में कल्याण हो। तो इसलिए ये परम कल्याण का मार्ग है जिसे सभी लोग धन्य हो जाते हैं, भगवान भी धन्य हो जाते हैं, जीव भी धन्य हो जाता है, सारा सृष्टि धन्य हो जाता है। तो इसलिए हमें सब इस भक्ति मार्ग में अच्छी तरह से प्रगति करनी चाहिए, इसी में हमारा भी यश होगा, और जो हमारे निकट के संबंधी हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं और जिनको हम प्रेम करते हैं, उनका भी यश इसी में होगा। वास्तव में यश इसी में है। रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को भी यही बताया, सच्चा यश क्या है? कृष्ण भक्त का है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज की कथा या ध्रुव महाराज की कथा सत्यों की बात है, करोड़ों करोड़ों साल बीत गए, लेकिन फिर भी हम ध्रुव महाराज की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी राजा जो हुए 1000-2000 साल पहले, उनकी चर्चा भूल जाएंगे, उनकी बातें हम भूल जाएंगे। इतने सारे राजा हुए, जैसे राजा समुद्रगुप्त और इनके पहले और कोई सब राजा हुए, अभी थोड़े साल बाद उनको भूल जाएंगे हम। नेपोलियन, अकबर 1000-10000 साल बाद भूल जाएंगे, लेकिन ध्रुव महाराज को भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भागवत में उनका वर्णन है, क्योंकि वो बड़े भक्त हुए, और कृष्ण के जाने के पश्चात, कृष्ण के अपने धाम लौटने के पश्चात भागवत ही धर्म को सिखलाने वाला एक मार्ग है, एक उपाय है। सारे नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषिगण ने सोनक ऋषि से पूछा, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाद भी सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार को धुनोदित। उन्होंने पूछा था कि कृष्ण भगवान जब लौट कर चले गए तो धर्म का पालन, धर्म की रक्षा कौन करेगा, धर्म में मार्गदर्शन लोगों को कौन कराएगा? उस समय सूत गोस्वामी ने जवाब दिया था कि कृष्णे स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम में, स्वधाम लौट के गए, स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाद भी सह, अकेले नहीं गए, कैसे गए? धर्म, ज्ञान आदि इन सब चीजों को साथ में लेकर गए। कलौ नष्ट दृशाम एष, कलयुग में लोगों की दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि नष्ट हो जाती है। कलौ नष्ट दृशाम एष, तो ऐसे परिस्थिति में पुराण आर्को अधुना उदितः। पुराण कौन सा पुराण? ये भागवत पुराण। अर्क सूरज के समान है, धर्म का ज्ञान देने के लिए, सबका मार्गदर्शन करने के लिए। अर्क अधुना उदितः, अधुना अभी अभी उसका उदय हुआ है, उदितः। ये श्रीमद् भागवत की रचना अभी अभी व्यास मुनि ने की है, और ये व्यास मुनि ने सुखदेव को सिखलाई सुनाई, सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई, और सुत गोस्वामी कहते हैं मैं भी उसी सभा में उपस्थित था, और इसलिए मैं इस भागवत पुराण को सुना रहा हूं। तो ये सूर्य रूपी भागवत का अधुना उदित है, अभी अभी उदय हुआ है। किस लिए हुआ है? अर्क सूरज के समान है, ये सबका मार्गदर्शन करने के लिए। तो ठीक है, कृष्ण अपने धाम में चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, कृष्ण रूपी भागवत हमारे पास में है। इसलिए भागवत भी भगवान का अवतार है, साहित्य के रूप में अवतार है। भागवत और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से उद्धव ने कृष्ण का संग किया, अर्जुन ने कृष्ण का संग किया, उसी प्रकार से हम भी कृष्ण का संग कर सकते हैं। कैसे? केवल भागवत का श्रवण कीर्तन करने मात्र से ही। अगर मैं आपके सामने बैठा हूं, या कोई भी व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आपसे बातचीत चल रही है, और उसके आंखों के सामने ही आप सो जाएं, वो बेचारा बात कर रहा है आपसे और आप उसके सामने ही सो जाएं, उसे कैसा लगेगा? उसी प्रकार से हम श्रवण कीर्तन करते हैं श्रीमद् भागवत का, तो कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और उस समय कृष्ण के होते हुए उनके उपस्थिति में उनके सामने ही हम सो जाएं, या हमारा मन इधर उधर भटक जाए, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जब हम भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, या कथा करते हैं, तो हमेशा हमें जानना चाहिए कि साक्षात कृष्ण, श्री कृष्ण यहां उपस्थित हैं हमारे बीच में। इसलिए हमें बहुत आतुर रहना चाहिए सुनने के लिए, ध्यान से सुनना चाहिए, इससे श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। नहीं तो कृष्ण हमेशा दूर रहेंगे, भक्ति मार्ग में प्रगति हमारी नहीं होगी। तो कृष्ण चले गए कोई बात नहीं, लेकिन भागवत तो है, वही कृष्ण भागवत के रूप में हमारा उद्धार करने आए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ का बहुत ध्यान से देखभाल करना चाहिए, यूं इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए ग्रंथों को, क्योंकि ये भगवान से अभिन्न होते हैं, और इस प्रकार से देखभाल करके, सम्मान देकर, जैसे भगवान के जो सामग्रियां होती है पूजा अर्चना की, हम कैसे संभाल के रखते हैं, वैसे ग्रंथों को भी हमें संभाल के रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। और इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण, केवल साफ सफाई करके रखना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हम श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे, उनके शुद्ध भक्त बन पाएंगे, और मृत्यु के बाद भगवान के धाम में हम लौट कर चले जा पाएंगे। ये हमारा वास्तविक यश होगा, हमारी सफलता इसी में होगी कि भगवान का श्रवण कीर्तन करके, हृदय को शुद्ध करके, उनका संग करने हम उनके धाम में लौट कर चले जाएं, तब वास्तव में सारे वैष्णव प्रसन्न होंगे, सारा समाज अभी गुणगान करेगा, जैसे प्रभुपाद का गुणगान करता है सारा समाज। धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि प्रभुपाद कौन है, कौन थे। उसी प्रकार से वास्तविक यश और सफलता हम तब प्राप्त कर पाएंगे जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे, और शुद्ध भक्त बनने के लिए आवश्यक है कि हम सब भगवान के पवित्र नामों का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी को अपना अपना जाप ध्यान से सुनना चाहिए। कई भक्त जाप करते समय निद्रा की अवस्था में आ जाते हैं, कई भक्त का मन इधर उधर भटक जाता है, कई भक्त सारा महामंत्र बोलते नहीं है, और खुद समझ में नहीं आता कि हम बोल रहे हैं कि नहीं। इसलिए सुझाव है आप सबके लिए कि एक बार अपने जाप करते समय टेप रिकॉर्डर साथ में रखिए, अपना ही जाप रिकॉर्ड कर लीजिए, एक दो माला 10-15 मिनट, और ये मत सोचिए कि मैं माइक्रोफोन है इसलिए बोल रहा हूं, तो स्पष्ट बोलना चाहिए, नहीं, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही जाप करते रहिए, नेचुरल जैसे आप हर रोज करते हैं वैसे जाप करते जाइए और अपने जाप को रिकॉर्ड कीजिए, फिर उसको सुनिए बाद में, फिर आपको पता चलेगा कि आप ठीक से जाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या बीच में एक हरे या कृष्ण या राम को आप उसका गले में अंदर ले रहे हैं कि उसका अच्छा उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, आप सब प्रयास करेंगे, ऐसा करेंगे सब अभी टेप रिकॉर्डर लेकर अपना अपना जाप एक या दो माला आप रिकॉर्ड कीजिए, फिर उसको सुनिए ध्यान से, करेंगे सब? ठीक है, कितने लोग करेंगे हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग नहीं करेंगे? आप नहीं करेंगे, फिर हाथ ऊपर नहीं आया। और किसने हाथ ऊपर है? मन का देह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भगवान कहते हैं कि मेरा जो शरीर है वो आत्ममायाया संभवामि आत्ममायाया, कि मेरे अंतरंग शक्ति का शरीर है, आध्यात्मिक सच्चिदानंद शरीर है भगवान का, इसलिए भगवान के शरीर में आत्मा में अंतर नहीं है। हमारी आत्मा सच्चिदानंद है लेकिन शरीर सच्चिदानंद नहीं है, इसलिए जब हम प्राण त्यागते हैं तो उस समय शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, इसलिए उनके आत्मा में शरीर में कोई अंतर नहीं है, उनका सारा शरीर ही आध्यात्मिक है। इसलिए जब श्री कृष्ण भगवान अपने धाम लौट कर चले गए तो जैसे हैं वैसे ही चले गए, बस यहां बैठे थे वृक्ष के नीचे चले गए। भगवान के लिए कोई एरोप्लेन में बैठने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि कभी कभी वाहन के ऊपर सवार होकर चलते हैं गरुड़ जी के ऊपर, तो भक्त जानते हैं कि कृष्ण भगवान यूं ही जैसे इच्छा करते हैं वैसे चले जाते हैं। कभी कभी अश्रद्धालु लोगों के लिए माया शरीर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इस माया शरीर को भगवान नहीं मानना चाहिए, भगवान का वो माया रूप हो सकता है, लेकिन भगवान पूर्ण सच्चिदानंद आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद विग्रह। और कोई प्रश्न? भक्त बड़े चढ़े होने के बाद भी उनका पतन कैसे होता है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जब भरत महाराज भी भाव भक्ति के स्तर में पहुंच गए, एक हिरण्य से आसक्त होकर उनका पतन हुआ, तो इस संसार कलयुग के जो भक्त अगर थोड़ा बहुत आगे बढ़कर उनका भी पतन हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है? जब तक कि हम पूरी तरह से शुद्ध भक्त नहीं होते, जब तक हृदय में एक भी कण अनर्थ का नहीं रहता है, तब तक हम पतन की संभावना से मुक्त नहीं है। इसलिए हर एक भक्त को हमेशा होशियार सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसे कोई कार्य न करें जिससे कि हमारी भक्ति मार्ग में पथ भ्रष्ट हो जाए। बड़े बड़े भक्त इतिहास में देखिए हुआ है, इसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जीव तटस्थ शक्ति है। तटस्थ मतलब तट पे, आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति के तट पर खड़ा हुआ है जीव, तो कभी भी भौतिक जाल में फंस सकता है, भौतिक आकर्षण में फंस सकता है। इसलिए हमें भक्ति मार्ग में बहुत तीव्रता से हरि नाम का जाप और कीर्तन करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए और थोड़ी बहुत तपस्या करनी चाहिए, जिससे कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारा संरक्षण करेंगे। और सबसे बड़ी बात, वैष्णवों के समाज में नम्रता से प्रेम से रहना, वैष्णवों का अपराध नहीं करना। वैष्णव अपराध करेंगे तो हमारा पतन निश्चित है, कोई भी क्यों ना हो, वो बड़े से बड़ा भक्त क्यों ना हो, अगर वो वैष्णव अपराध करता है तो उसका पतन निश्चित है। तो इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बचकर रहना चाहिए, अपनी साधना अच्छी तरह से करनी चाहिए, नियमों का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए, वैष्णवों का की सेवा करनी चाहिए, फिर हम सुरक्षित रहेंगे। और कोई प्रश्न?
प्रभु नित्यानन्द श्रीयाद्वैत गदाधर श्रीभाषादि गौरभक्तवृन्द Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Sab zor se boliye, sab zor se gaiye.
Hare Krishna, कृष्ण हरि 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 राम हरि राम 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 हरि 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे